हमारे बीच में सेवा के आदि रतन आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी, अपने युवा काल में जब आप बी कर रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए आपको ये ईश्वरीय ज्ञान का रुझान जगा। प्यारे बाबा ने आपको 1957 में अपना अनमोल रतन बनाया और तभी से लेकर आप ईश्वरीय, एक वर्ष पश्चात ही आपने ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन विश्व सेवा के लिए अर्पित किया। आप साकार यज्ञ माता पिता के हाथों से पली हुई उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। आप आदरणीय भ्राता जगदीश जी के सानिध्य में लेखन और मुद्रण के कार्य को करते रहे। आज जो हमारी यज्ञ के आदिकाल से पत्रिका बनी हुई है, पहले त्रिमूर्ति पत्रिका के नाम से थी, आज ज्ञानमृत पत्रिका के नाम से है, जो लाखों की संख्या में निकलती है, उसके आप मुख्य संपादक हैं। मीडिया प्रभाग के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं। हमारे इस ईश्वरीय यज्ञ की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके भी आप मेंबर हैं। इस प्रकार से आप सैकड़ों यज्ञ की पुस्तकों का संपादन लेखन आप कर रहे हैं। आप यज्ञ के रक्षक, सर्वस्नेही, सहयोगी आत्मा हैं। ऐसी महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, यज्ञ रक्षक आत्मा से हम निवेदन करते हैं कि आज का अपने माता पिता के अनुभवों से हमें अनुग्रहित करें और साथ साथ हम अपनी स्थिति को बाप समान कैसे बनाएं, इस पर हमें प्रकाश डालें। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अति मीठे प्यारे बाबा के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों बोला कि उसने हमको अपना बना लिया, भगवान ने हमको चुन लिया और अपना बना लिया। और क्या किया, नेक्स्ट क्या किया, अपना बना करके कुछ अपना हमारे से कुछ काम ले लिया, कुछ हमारे से सेवा करा ली, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे तो बन गए, साथ साथ और क्या करते हैं, सेवा भी करते होंगे, सेवा में लगा दिया, अपने कार्य में लगा दिया, भगवान ने अपने कार्य में लगा दिया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें भी ऐसे आज से 61 वर्ष पहले, आप में से बहुत कम 61 वर्ष के होंगे लेकिन कम होंगे, 61 वर्ष पहले बाबा ने हमको चुना और चुन करके, और हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, पढ़ाई करते थे, तो हमें ज्ञान मिला, बहुत खुशी हुई। मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले फॉरेन कंट्री में गया था, किसी रशिया में, एक ने पूछा कि कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था। अगर आपसे पूछे आप कि आपका हैप्पीएस्ट डे कौन से था, हर एक का होता है खुशी का दिन बहुत, कोई कभी डिग्री लेता है वो बहुत खुश हो जाता है, किसी की नौकरी लग जाती है बहुत खुश हो जाता है, किसी की शादी होती है बहुत खुश हो जाता है, हर एक का कोई ना कोई होता है खुशी का दिन। तो अगर हम आपसे पूछे आपका कौन सा सबसे ज्यादा खुशी का दिन था, तो क्या जवाब देंगे आप? हैं जी, क्या जवाब देंगे? एक बताए क्या? जब बाबा मिला, जब बाबा मिला तो वही ना। हम कहते हैं हमारा उससे भी पहले था खुशी का दिन। आप कहेंगे कैसे? जब ये ज्ञान मिला। अभी हमने बाबा को नहीं देखा था, ना मम्मा को देखा था, ना कोई ईश्वरीय परिवार देखा था, परंतु ये ज्ञान जो मिला, आप देखो सोचो, आपको भी किसी ने ज्ञान दिया होगा कि आप आओ सेंटर पर आओ, या प्रदर्शनी देखने आओ, या किसी आप चलते फिरते भी कहीं पहुंच के होंगे आप में से कहीं। तो आपको ये तो मालूम नहीं था कि यहां हमें कोई परमात्मा मिलेगा, था मालूम किसी को? हाँ, वो ज्ञान सुनने के या उस थोड़ा और नजदीक आने के बाद मालूम पड़ा, ओहो ये तो भगवान का ज्ञान है। हम तो कहते हैं हम जब ये ज्ञान मिला, आप विचार करो इस नॉलेज पर, कितना वंडरफुल ज्ञान है ना। ऐसा बात किसी शास्त्र में, किसी गुरु गोसाई के पास, किसी विद्वान आचार्य पंडित, किसी को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। पूरा अनुभव से भले आत्मा आत्मा कहते हैं आत्मा, लेकिन क्या है आत्मा किसी को मालूम नहीं। परमपिता परमात्मा कौन है, हमें कहां से आया, कहां जाना है, ये सृष्टि चक्कर क्या है, बड़े बड़े विद्वान आचार्य किसी को भी मालूम नहीं है। सब यानी अनभिज्ञ है। तो जब हमें ये ज्ञान मिला, देखो वो एक दिखाते हैं ना, वो एक दृष्टांत दिखाते हैं कि वो विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो शेष नहीं, उस पर नाग पर वो जो नैया दिखाते हैं, वो शेष की वो दिखाते हैं सीट, और वो लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। बाबा भी पांव लक्ष्मी को निकाल दिया था कि क्यों तुम पांव दबाओगे, और वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो उनसे पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहा उसने कि मैं गीता ज्ञान का सिमरण करके बहुत खुश हो रहा हूं। ये वही ज्ञान है, इतना वंडरफुल। मैं तो कई दफा कहता हूं वंडरफुल भी है, प्रैक्टिकल भी है, साइंटिफिक भी है, रीजनेबल है, बुद्धिगम्य है। ऐसे नहीं कि भाई कोई टुक्के वाली बात है, बहुत वंडरफुल ज्ञान है। आप देखिए पहले अपना परिचय देखिए, कितना हमें जब मिला, मिलते ही अनुभूति होनी शुरू होगी। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारे एक भाई थे ओम प्रकाश जी, वो उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। पहले तो कहा मैं तो भी आत्मा नहीं हूं, मैं तो शरीर हूं, ये शरीर तो एक मशीनरी है, उसमें से कोई भी पुर्जा बिगड़ेगा तो खत्म, उसमें आत्मा की क्या बात है। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने, हाँ आप मानते तो थे, सभी मानते आत्मा आत्मा, जब मैंने कहा मैं आत्मा हूं इतना बोला, बहुत अनुभूतियां होनी शुरू होगी, हल्कापन, खुशी, बहुत कुछ होने लगा, सब दृष्टि वृत्ति बदल गई एकदम, वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी। उस समय बिंदु रूप के ज्ञान नहीं था, अंगोष्ठ सदृश का था। बाबा ने पहले कहा था आत्मा अंगोष्ठ सदृश है, जैसे टीका लगाते हैं, जो कुछ भी था लेकिन उससे अनुभूति होगी। तो वंडरफुल ज्ञान है। तो इस ज्ञान देखिए आप कितनी, हम मुरली सुनते हैं अभी, देखो ऐसा ज्ञान जो कि ये, उसको अगर आप देखें बगैर ऑल माइटी अथॉरिटी के कोई बोल ही नहीं सकता, कह नहीं सकता। देखो तो आज जैसे नारद की मिसाल दी, दुनिया में नारद बड़ी भक्ति मार्ग में नारद की बातें बहुत हैं, बहुत नारद की बातें, वो जान बजाता था, ये था वो था, बहुत बातें कहते हैं, सब जगह प्रकट हो जाता था। बाबा ने क्या कहा, वो तो भगत था, उसने अपना आक्ष देखा मैं तो बंदर हूं। अब उसको क्या कह दिया नारद को, कि वो भी ऐसा था, इसी प्रकार से देखिए महाभारत है, कितनी उसकी वो सीरियल चले थे, वो था पांडव थे कौरव थे, लड़ाई हुई भीष्म पितामह ये वो, बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख दी। अब वो हम तो कहते कथा लिख दी, लेकिन बाबा ने एक ही शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला, क्या बोला, बच्चे मैंने तो गीता ज्ञान द्वापर के अंत में दिया नहीं, कब दिया, कब दिया, मैं तो संगम पर आता हूं, तो गीता वो कैसे, महाभारत में कैसे हो रही, महाभारत में भी खड़ी है, यादव कौरव पांडव सब उपस्थित है, विनाश होगा नया युग आएगा, तो ये एक बात, हु कैन स्पीक दिस, इतनी बढ़िया था, इतनी दुनिया सब मानती है, बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित इसी बात में फंसे पड़े कि महाभारत वही लड़ाई हुई, ये हुआ मारा मारी हुई सब कुछ हुआ। अरे भाई द्वापर में लड़ाई हुई तो फिर उसके भगवान ने ज्ञान दिया तो फिर कलयुग कैसे आया, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो ये जो नॉलेज है इतना वंडरफुल ज्ञान है जो कि स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के कोई दे नहीं सकता। और रामायण को देखिए कितनी बातें रामायण की हैं, वो था उसकी तीन चार रानियां थी, राम वनवास गया, सीता थी, वो हनुमान था पहाड़ी उठा के लाया, ये क्या वो क्या, बाबा ने क्या कहा, बच्चे दस सिर वाला तो मानव कोई होता ही नहीं, एक जो सिंपल सी बात है, एक ही सेंटेंस बोला, बच्चे रावण ऐसा कोई कभी था ही नहीं। तो रावण खत्म तो फिर रामायण कहां गई, रामायण भी खत्म, अभी तक अयोध्या में झगड़ा राम का चल रहा है, अभी तक चल रहा है। देखिए बाबा ने कहा बच्चे ऐसा था ही नहीं, तुम सीताएं हो मैं राम हूं, तुमको तुम जब अपने को बोलते हो रावण तुम्हें पांच विकार नर में पांच विकार उठा के आते, मैं तुम्हें ले जाता हूं अयोध्या में, तो यहां युद्ध का नाम निशान नहीं। कहां ये आध्यात्मिक रहस्य है, कहां लोग उसके पीछे क्या पड़े हुए हैं, बाबा ये कौन बोल सकता है, ही हिमसेल्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी जो है वो ही ये बता सकता है, नहीं तो दुनिया सारा काम ही खत्म हो गया। इसी जगह बाबा ने क्या कहा, बच्चे एक मुरली में था कुछ दिन पहले, वो उसमें रावण में आत्मा नहीं है, सुना था आपने मुरली है, परंतु सब आत्माओं में रावण है, देखो क्या वंडरफुल पॉइंट है, सभी आत्माएं जो पांच विकारों में ग्रसित है सब में रावण है लेकिन रावण में आत्मा नहीं है, ये भगवान उवाच बाबा के महावाक्य। तो इस ज्ञान को हमने जब सुना इतनी खुशी हुई, इतना मजा आया, इतना आनंद आया, हमने कहा स्वयं परमात्मा का और कोई ये ज्ञान दे नहीं। सृष्टि चक्कर की बात देखो, सृष्टि चक्कर हम खोलते थे हिस्ट्री लीनियर है, लोग ये समझते अभी भी समझते हैं, पता नहीं अरबों वर्ष क्या कितना कितना बोलते हैं, ये चली वो चली बस वो इतनी बातें करते। बाबा ने क्या कहा, केवल चक्कर कितने हजार वर्ष का है, 5000 वर्ष का है और चक्कर घूमता रहता है, इट इज साइक्लिक ना कि लीनियर, उसके चार हिस्से कर दो, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम पर सत्युग, कितना इजी ज्ञान है, कितना सिंपल है, माताएं भी याद कर सकती हैं, आप इतना लंबी चौड़ी बात तो याद ही नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है ये ज्ञान सुनकर के बहुत 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 खुशी हुई, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हुई, मन में कंटेंटमेंट, बुद्धि में कंटेंटमेंट आ गई, खुशी होगी, आनंद आ गया, बस हमने कहा ये स्वयं भगवान के और कोई ज्ञान नहीं था, निश्चय हो गया भाई, बाबा से मिले नहीं, मम्मा से मिले नहीं, किससे नहीं मिले, ये हुआ। तो क्या करना चाहिए, अगर आपको निश्चय है, हम सभी को निश्चय है, स्वयं भगवान आया हुआ है ना, निश्चय सभी को, यहाँ पर तो आप आए तो कैसे है, यहाँ कहाँ पहुंचे आप, पता आपको, यहाँ उस भगवान का रथ, अब भगवान स्वयं उसमें आया, उसके जब कदम इस पर पड़े, ये हाल तो था नहीं, अब न ये था न आसपास सब बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग नहीं, हम जब ज्ञान में आए थे केवल बीच में जो अभी तीन का है ना छप्पर, अभी वही है छप्पर, तो उसी में ही वही मकान था, चारों तरफ ना ये इंद्रप्रस्थ था, ये न छोटा हाल भी नहीं था, हिस्ट्री हाल, ये कोई बिल्डिंग नहीं थी, पहाड़ी थी और वो था, कुछ था नहीं। हम तब आए थे 1957 में, वहीं पर क्लास होती थी, वो जो यीशु दादी का है ना, हम वहीं पर ही वो बिछा के टाट या दरी बिछा के बाबा मामा बैठते थे, पहले मम्मा आती थी फिर बाबा आते थे, मम्मा वाणी चलाएगी बाबा वाणी चलाएंगे। और होते क्लास में कितने होते थे पता है आपको? 15-20-25-30 बस इतनी क्लास थी। और बाबा उस वक्त क्या कहते थे बच्चे, हम सुन सुन के आश्चर्य करते थे, बहुत वृद्धि को पाएगा, बड़े बड़े एक्टर्स भी आएंगे, बड़े बड़े वो महाराजा ऋषि मुनि सब वो जो साधु सन्यासी सब इस ज्ञान को मानेंगे, आप उसे लाइन लगेगी। ये बाबा उस वक्त कहते थे। तो हम अंदर में कहते थे बाबा अभी तो कुछ थोड़ा बहुत है, इतना तो है नहीं। लेकिन आप देख लीजिए, अब आप आओ, अभी गाड़ियां ही गाड़ियां आ रही थी यहां पर ऊपर, हम आए लाइन ही है और क्या, जो अभी अभी केवल 15,000 माताएं आई हैं, तो पूरी वहां से लेकर यहां तक लाइन लगी थी अंदर बाहर देखो। तो उस वक्त 25-30 थे, तो अब तो हमारी क्लास कितनी बड़ी होती है जब डायमंड हॉल ने 25-30 हजार की होती है। यानी जो बाबा ने उस वक्त कहा वो सब सामने आ रहा है, देख लीजिए। और जो बाबा ने और भी बहुत कुछ कहा हुआ है, क्या कहा बाबा ने, रोज कहता बच्चे इन आंखों से जो तुम देखते हो वो नहीं दिखेगा, वो खत्म हो जाएगा, और जो नहीं देखते हो वो देखने में आएगा, कहते ना बाबा ये। तो जब वो सिद्ध हुआ है अभी हमारे सामने हम देख रहे हैं, तो ये भी होना ही है। जो बाबा ने बातें कही हैं वो सब प्रूव हो रही हैं, सिद्ध हो रही है। वो सब अभी कई बातें तो साइंटिस्ट अभी उसकी वो कर रहे हैं, उसमें डीप जा रहे हैं, ये साइकिल की बात, हिस्ट्री की बात, ये बात उसमें जा रहे हैं। अभी आए थे हमारे पंजाब से वो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग स्टडी करने के लिए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय चलता कैसे है, इनका अरेंजमेंट कैसे है। बड़े खुश हुए कि बड़ी सफाई है, बड़ा ये है, बहुत कुछ बोला। हमारे इलाके के आए थे। तो कहने का मतलब है जो बाबा ने कहा वो हो रहा है, और जो बाबा ने बोला वो होना अवश्य है। तो हम जब इस ज्ञान में आए, फर्स्ट टाइम बाबा मामा से मिले, अभी ज्ञान सुना दो तब निश्चय हो गया। हमें कह रहा था जिसको निश्चय हो जाए, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान आ चुका है, कलयुग जाएगा, सत्युग जाएगा, वो क्या करेगा बोलो, वो क्या करेगा पूछ, जिसको पक्का निश्चय है कि ये भगवान का कार्य है। तो हमें भी निश्चय हो गया, तो हमने क्या किया, ये निश्चय किया कि जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य। उसी वक्त थोड़ी भी देरी नहीं गई, जब ये अनुभूति हुई, अभी बाबा को देखा भी नहीं, कि जो बाप का कार्य है वो हम बच्चों का ही कार्य है, शुरू हो गया। तो हम बाबा के पास आए, हमने कहा भी ये आप इतना, जो उस भाई से पूछा हमारे ओम प्रकाश भाई, ये कहां से मिला आपको ज्ञान, तो उन्होंने बताया हम बाबा को दिल्ली मिलने आए। बाबा उन दिनों में क्या थे, यहां बहुत बारिश होती थी, बहुत सर्दी बहुत होती थी उस वक्त, तो बाबा सर्दियों में दिल्ली जाते थे, दिल्ली या बॉम्बे जाते थे, तो बाबा वहां आए हुए थे। हम बाबा के पास पहुंचे, तो बाबा से जल्दी बताता हूं, बाबा से पहली मुलाकात हुई। देखो बाबा का, हम कहते हैं ना बाबा, शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूं, परंतु मेरा इसमें भिन्नता है। वो कोई साधारण तन नहीं था रियली, वो असाधारण तन था। आप कहेंगे कैसे, एट दी एज ऑफ 80 साल की उम्र होगी, 81 साल की, जब हमारे ज्ञान में सीधे बैठे हुए हैं, कोई अभी सहारा नहीं किसी का, और टांग पे टांग ऐसे बैठे जैसे यंग है, शाइनिंग चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, बिविचिंग आईज, और इतने हाइट भी 6 फुट के लगभग होगी। यानी ही वॉज नॉट ए सिंपल, बड़ी दिव्य मूर्ति थे जैसे। हमने बहुत पर्सनैलिटी देखी है, लेकिन वो यूनिक पर्सनैलिटी थी। आई टेल यू, ऐसी पर्सनैलिटी हमने आज तक कभी और देखी नहीं। बाबा को देखा, मम्मा को देखा, बाबा से मिले। बाबा को उस वक्त बहुत थोड़े होते थे ना, चंद, मगर वो सारे सेवा केंद्र भारत में कितने थे, पंजाब में तो 2-3 थे बस, यूपी में एक इलाहाबाद कानपुर था, और तो कोई था नहीं शायद ना, हाँ लखनऊ भी शायद ना, लखनऊ भी था, 3-4 सेवा केंद्र सारे यूपी में, पटना कलकत्ता कोई नहीं था, अहमदाबाद भी नहीं था, बॉम्बे में 2-3 सेवा, 2 होंगे सेवा केंद्र, पूना था, बेंगलोर सारा साउथ बिल्कुल नहीं था, तब हम आए तो कितने स्टूडेंट्स आते होंगे, बहुत कम। तो कोई भी एक नया बाबा का बच्चा पैदा होता था, सारे परिवार को मालूम पड़ जाता था। तो हम जब बाबा के पास आए तो बाबा को मालूम था, जब बाबा की गोद में गए, किसी ने कहा नहीं कि गोद लेनी है, अट्रैक्ट इतनी अट्रैक्शन ही बाबा की गोद में जाते थे। क्या उस वक्त बाबा मम्मा दोनों माता पिता है ना, ये कौन है, आदि देव और आदि देवी, ये बाबा तो है ही साथ, बाबा मीन बा और बा दोनों मिले हुए हैं बाबा। हम बताए सारे यानी धर्मों में एक परमात्मा ईश्वर अल्लाह जो कुछ को उसकी मान्यता है, और साथ साथ इन दो भी पर्सनैलिटीज की मानता है, आदि देव आदि देवी, महावीर और आदि वो है जैन वाले मानते हैं, और मुसलमान एडम एंड ईव, आदम और बीबी, हम ब्रह्मा और सरस्वती कहते हैं। परमात्मा के साथ साथ इसके इनके भी सब धर्मों में, क्योंकि ये बीज है, ये शिव बाबा बीज है, तो ये पहले पहले दो पत्ते हैं। तो देखा हमने उनको मिले जब, तो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, हमारे पति वरदान को आप भी सुन के आश्चर्य कहेंगे। हम पढ़ते थे बाबा भृगु ऋषि है, हम बताएं आपको, कहता मैं कुछ जानता है नहीं, परंतु ही नोज एवरीथिंग आगे क्या आने वाला है। बाबा ने कहा बच्चे चार पांच साल पढ़ोगे, ये तो बहुत लंबी पढ़ाई है और मुश्किल पढ़ाई भी है, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। बोलो कौन बोल रहा है, स्वयं भगवान शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा। और मैं नया अभी 15-20 दिन का था अभी, जो जो सच है वो बता दिया, पढ़ाई काम आने वाली, विनाश तो सामने खड़ा है, बाबा ये भी कह दिया। तब भी लगता था विनाश, जैसे अब लगता है ना, कभी क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तब भी दुनिया डावाडोल थी, अब भी डावाडोल है और डावाडोल ही रहेगी, जब से शिव बाबा आया तो डावाडोल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये देख रहे हम कितनी रोज कुछ न कुछ अफरा तफरा मची हुई है, लड़ाई झगड़े मारा मारी इधर उधर, आप देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, शांति तो कहीं है ही नहीं, बताओ मुझे, चाहे वो धनी है चाहे गरीब है, अशांति है, शांति फैली हुई है। तो क्या है, क्या भगवान ने ये दुनिया रची थी क्या, शिव बाबा ने। तो बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, मैंने कहा ठीक बात है, मुझे तो पहले निश्चय था कि जो बाप का कार्य तो बच्चों का कार्य, और मम्मा से मिले बाबा से मिले बड़ी खुश, सारे पिछले परिवार से मेरे सारे आए हुए थे, दादियां भी वही थी, क्योंकि सेंटर तो थे नहीं, जहां बाबा मम्मा आते दादियां, वो उसको दादी नहीं कहते बहने कहते थे, तो मिले उनसे, बड़ा खुशी हुई, बड़ा आनंद आया। तो और ये पहला खुशी क्या हुई मुझे, फर्स्ट हैप्पीनेस ज्ञान सुनने से हुई, और हैप्पियर कब बने, जब बाबा मम्मा से मिले तो आई वॉज हैप्पियर, कि यही हमारे लौकिक अलौकिक परलौकिक सब कुछ हमारे यही है, ये निश्चय हो गया, यानी अपने माँ बाप जैसे हमको मिल गए ऐसा निश्चय हुआ। फिर हम गए जब वापस आए जहां पटियाला में पढ़ते थे, एक लेटर लिखा बाबा को, इंग्लिश में लिखा, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। मैंने क्या लिखा, क्योंकि वैराग आ गया ना बहुत, बाबा मम्मा को देखकर सारे परिवार को देखकर के सब, कि ये स्थापना का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बाबा को लिखा आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन बिल्डिंग बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन, वन ऑफ द स्टोन ऑफ द ह्यूज एडिफिस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, जो आप एक बहुत बड़ा महल बना रहे हैं नई दुनिया का, उसमें एक मैं पत्थर का बनना चाहता हूं। फिर हमने कहा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम देन बिकमिंग टू गोल्डन एज, इस प्रकार से लिखा और भी था कुछ। तो बाबा ने फिर जवाब दिया, इस बच्चे को वैराग आया है कि बच्चे डायरेक्शन दी क्या करना है, गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर लौकिक परिवार लौकिक फैमिली। तो ये बाबा ने काम दे दिया, तो खूब हमने सेवा करनी शुरू की, अपने हॉस्टल में ही एक कमरा बना करके ग्रामोफोन ला करके रोज सुबह शाम योग करना, लोगों को बुलाना, अपने स्टूडेंट को क्लास कराना, जो हमारे दूसरा भाई तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारा वार्डन के क्या कर रहे हो आप लोग, सुबह सुबह 4 बजे उठते हो और टेप रिकॉर्ड, वो टेप रिकॉर्ड नहीं था वो होता था थाली वाला, वो सुई वाला एक होता था, ये बजाते हुए ये क्या यहाँ पर बुआ है। तो हमने कहा हम छोड़ते हैं, हॉस्टल छोड़ दिया, बाहर गए सेवा केंद्र खोलना, सेवा केंद्र खोल दिया, मकान लिया। पहले पहले दादी जानकी जी आई हमारे पास, छोटे हम दो थे भाई, दो तीन भाई थे, दादी जानकी जी आई। तो कहते ना कई दफा मुरली में भी सुनाते, कहते आत्म और ओम प्रकाश को मैंने अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है। उन्होंने खिलाया एक दो दिन, हम तो खुद बनाते थे, हीटर पर बनाकर खाते थे, लेकिन वो जब दादी आई, उस वक्त बहन कहते थे, तो उन्होंने बनाया खिला करके, हमने वो जैसे ब्रह्मा भोजन किया वो करा। इस प्रकार से चलते रहे सेवा के, फिर हमारी हाबी बन गई कि हम सेवा केंद्र खोले, क्योंकि उस वक्त एक बाबा का बच्चा पैदा होना भी बड़ा मुश्किल था, बहुत दुनिया खिलाफ थी, बहुत अगेंस्ट, जैसे हमारे बाबा को गाली देती थी, क्यों वो सिंध की बातें बहुत मशहूर थी। लेकिन धीरे धीरे करते 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 सेवा केंद्र खुलने शुरू हुए, जैसे पटियाला खुला, नाभा खुला, चंडीगढ़ खुला, जलंधर खुला, देहरादून खुला, कई प्रकार का हम इसी काम में लगे रहते थे। कभी कहां जा रहे हैं, कभी मम्मा आ रही है, कभी बाबा आ रहे हैं, इस प्रकार से होता था। तो पढ़ाई क्या पढ़ेंगे बताइए आप, जब इसी काम में लग जाएंगे पढ़ने का तो फिर मिस करेंगे कॉलेज। परंतु फिर भी आई डोंट नो हाउ, चार साल पांच साल में हमने इंजीनियरिंग पास कर ली, हमें उन्होंने पास कर दिया, ठीक है। तो डिग्री हम लेने नहीं गए क्योंकि हमें वो नौकरी करनी नहीं थी। तो पास हो गए, तो फिर हम इसी प्रकार से इसी दौरान बाबा अपने लोग के घर गए समर वैकेशन में, उनको भी ज्ञान दिया, सबके ज्ञान तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा ज्ञान है, उनको योग सिखाया, योग में भी टिकने लगे। लेकिन मेरे लोग एक फादर थे, वो बड़े भगत थे, बहुत वो ये भागवत पुराण होता ना, एक भागवत पुराण आप जानते होंगे, उसमें किस्से कहानियां बहुत है, श्री कृष्ण की, राम की, ध्रुव की, प्रहलाद की, वो लोगों को सुनाते थे, वो उसी में मस्त रहते थे। वो हमारी लैंड थी 40 एकड़, वो भी तो जब उनको सुनाया जाता है बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा फिर कहता मैं बात तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो अगर बाबा पूरी कर रहे तो मैं बिल्कुल ही चल पड़ूंगा। क्या शर्त बताई उन्होंने, अगर के बाबा मुझे कुछ दिखा दे, साक्षात्कार करा दे, तब मैं मानूंगा इस बात को। मैंने कहा मुझे तो अभी तक हुआ नहीं, मैं तो बाबा से मिले हूं, मम्मा से मिले हूं, आप तो यहां बैठे हैं। तो कहता नहीं, अगर जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तो मैं कैसे मानू। तो आप मानेंगे, हम जैसे घर जाते हैं तो भाई खाना खाना है, भोग लगाओ, तो गुरुवार का दिन था, तो उठ के वो खड़े हो जाते हैं, रियलिटी बता रहा हूं, खड़े हो गए और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, उनके हाथ में आता नहीं है, और बड़े उदास होकर नीचे उतरते हैं। कहते मुझे मैंने क्या हुआ कि श्री कृष्ण देखने में आया, छोटा बच्चा, मैं पकड़ता हूं तो यहां जाता हूं तो वहां चला जाता है, वहां जाता हूं तो वहां चला जाता हूं, आई कुड नॉट, मैं उनको पकड़ नहीं सका, मैं छोटे बच्चों को नहीं पकड़ सके, तो क्या बात है। कहता फिर हाँ, फिर कहता आपके बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान को पूरा फॉलो करोगे, धारणों पर चलोगे, खान पान शुद्ध करोगे, तभी श्री कृष्ण तुम्हारे गोद में आएगा। तो ठीक है, उसने कहा मैं करूंगा, वो मान गए। वो फिर वो नेक्स्ट गुरुवार को फिर हम योग में बैठे, तो वो ध्यान में फिर चले गए। उसके बाद फिर उनको श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, बहुत उसके आंसू आए, जैसे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि बाबा जो है वो भक्त वत्सलम भी है, भक्तों की कामना भी पूर्ण करते, आई टेल यू। तो उनको इतने साक्षात्कार होते थे कि बात मत पूछो। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा तो कमाल हो गया, हमारे लोग एक फैमिली में ध्यान पर, हम फिर ऐसा हो गया, हम के बाबा से पूछ के आओ, वो बाबा से पूछ के आए, कोई बात हो बाबा से पूछ के। फिर वो बाबा मम्मा से मिले, बाबा मम्मा ने उनको बहुत प्यार किया, यहां आते थे तो जब सीजन नहीं होता था तो मम्मा उनको गद्दे पर बिठाती थी, भोग प्यारे लाल भोग लेके जाओ, इतने वो नजदीक हो गए। इसे सारा हमारा लौकिक परिवार ज्ञान में आ गया, 8 मेंबर पूरे ज्ञानी बन गए और लगभग समर्पण ही हो गए। अब हम 2 बचे हैं, 6 चले गए अभी वो शरीर छोड़ के, क्योंकि 57 से लेकर के धीरे 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 सब चले गए, हम अभी 2-3 रह गए। इस प्रकार से हम ये चले, तो जब हमारा किसी न किसी प्रकार से वो पास भी हो गए, इंजीनियरिंग भी पास कर ली। फिर हम एक बार आए, हम एक और बात सुनाते हैं, बाबा मामा मिलने के लिए आए थे। अभी जो है ना टेनिस कोर्ट आप देखते हैं, अभी वो शांति स्तंभ है, यहां टेनिस कोर्ट था और कोई इलाका कुछ बिल्डिंग नहीं थी। पहली दफा जब हम आए तो बाबा उसमें बच्चों के साथ खेल रहे थे, थोड़े थे आए हुए पार्टियां। क्या खेल रहे होंगे बताओ? नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे। दादा बिछड़तन थे, वो बाल फेंकते थे, वो लड़ाते थे बाद, वो बच्चे पकड़ते थे उसको, जो मतलब उसको आए हुए थे भाई बहन। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों को खिला रहे थे, शाम का वक्त था। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, हमारे पास कैमरा था। बाबा ने खेल बंद कर दिया, कहते नहीं फोटो मत लो। मैंने कहा ठीक है। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा बोल रहे, ब्रह्मा बाबा दोनों ही बोल रहे, आत्मा का तो फोटो आता नहीं है, मेरा तो फोटो आएगा नहीं, और ये शरीर तो छींची है। यानी बाबा हमेशा शरीरों से न्यारा करते थे, शरीर को मत देखो आत्मा को देखो, बार बार यही कहते थे, जिसको भी देखो आत्मा देखो शरीर मत देखो। तो हमेशा अपने शरीर में भी नहीं कहते थे, जब कोई मिलता था ना गोद में तो बाबा पूछते थे किससे मिल रहे हो, पूछते थे। तो ये शरीर से नहीं शिव बाबा, इसमें उससे मिल रहा हूं। जब नक्की लेक पे हम जाते थे बाबा के साथ घूमने के लिए, धीरे धीरे बाबा पीछे मुड़ के पूछेंगे बच्चे किसके साथ चल रहे हो, हम कहते शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से बाबा हर बात में शिव बाबा को ही आगे लाते थे, अपने को छुपाते थे और शिव बाबा को आगे लाते। भोजन कर रहे हैं तभी पूछेंगे कि उसको उसकी याद में करो। हर प्रकार से बीच बीच में बार बार बाबा कहते थे हम सब, मैं भी उससे सुनता हूं, तुम भी उनसे सुनो। ये बाबा बार बार रिपीट करते थे। ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं लगा तो फोटो लेता, लेकिन फिर भी कहा अच्छा बच्चे का दिल है तो फोटो ले लो, हमने लिया फोटो। इस प्रकार से हम फिर पास भी हो गए बाबा मम्मा के पास, फिर अपने लोगों के माता पिता को लेके आया। तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो कहा था आपको तुम्हारी पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, याद था बाबा को। तो उसी वक्त बाबा ने हमको दिल्ली भेज दिया सेवा पर। ये सुन लीजिए, पढ़ाई 4-5 साल पूरी की, डिग्री लेने वाले थे, बाबा ने कहा कोई जॉब करने की दरकार नहीं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बाबा ने स्वयं हमको समर्पण जैसे इस सेवा में लगा दिया। तो मैंने उसको कहा भाई को दिस वॉज माई हैप्पीएस्ट डे, ये मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन था कि बाबा ने हमको स्वीकार कर लिया एक भाई होते हुए। बहनों तो सेवा करती थी लेकिन भाई बहुत कम थे, अब तो भाई बहुत हो गए, अब सब जगह भाई भाई है सारे मधुबन में, उस समय तो बहुत कम थे। तो बाबा ने कहा अच्छा आप जगदीश भाई के पास सेवा करने जाओ। सेवा में लगा दिया कितका 1962 में, और तब से हम दिल्ली में रहे। बहुत सेवाएं की, कोई भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा होती थी। फिर क्या हुआ वहां पर प्रदर्शनी बनी बॉम्बे में, बीच बीच में आते रहे बाबा से मिलते रहे, डायरेक्शन देते थे, करेक्शन देते थे, भिन्न भिन्न चीजें होती रही, बाबा की नजर थी हमारे पर। तो प्रदर्शनी बनी और हम आए यहां पर बाबा से मिलने किसी काम से। बाबा ने उसी बैठा हुआ भी वहां पर क्लास के अंदर, बाबा ने कहा बच्चे जाओ बॉम्बे जाओ प्रदर्शनी देख के आओ। हम बॉम्बे के प्रदर्शनी देखी, तो हम कॉपी करने में होशियार है बताए आपको, फटाफट कॉपी की और हमने दिल्ली में भी एक चित्रशाला खोल दी, वहां पर आर्टिस्ट एम्प्लॉय कर दिए, क्योंकि उस वक्त जो सीजन था वो प्रदर्शनी की सेवा का सीजन था। अब तो बहुत प्रकार की बातें हो गई है, तब उस वक्त प्रदर्शनी द्वारा ही सेवा होती थी बहुत। तो हम एक बार आए बाबा के पास, 20 चित्रों का सेट बना के आए ऑयल पेंटिंग का, तो बाबा ने यहां रख दिया, ये हिस्ट्रियाल बन चुका था, बाबा आए देखने के लिए, दीदी भी थी साथ थी, इट मीन्स मातेश्वरी चली गई थी। तो बाबा ने देखा, अच्छा लगा, बताया ठीक है ये है। फिर बाबा ने हमको बुलाया अपने कमरे में, तो देखो क्या वरदान दिया। मैं नीचे बैठने लगा, गद्दी के नीचे आप देखते ना, एक चार पही है और नीचे एक गद्दी है, बीच में है, मैं वहां बैठ रहा था। बाबा कहते नहीं, मेरे साथ गद्दी पर बैठो। गद्दी पर बिठाया अपने साथ। फिर महावाक्य के उच्चारण के बच्चे वरदान दिया, बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, हम बच्चों की गद्दी का, बच्चों की गद्दी। आगे बोला, यहां भी और वहां भी। यहां कहां, संगम पर। अब आप जो भी काम करते हैं क्या समझते हैं, मानो घर है आपका, कोई दुकान है किसी की, या कोई ऑफिस में काम करते हैं, क्या करते हैं भाई, मारा बाबा के है, एक घर भी बाबा के है, गद्दी बाबा की है। जो ये समझते हैं तो कहा, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की, और जो ऐसा समझते हैं तो वहां पर भी बाबा की गद्दी पर, जो बाबा के बाद गद्दी पर बैठेंगे। तो ये वरदान जबरदस्त था कि बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी वहां भी। बहुत बाबा ने उमंग उत्साह भर दिया। आप मानेंगे, छोटी सी चित्रशाला थी, चार पांच आर्टिस्ट थे, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, हाथ से बनती सब चीजें, ये बनिया वहीं का बना हुआ, ये भी वहीं का है और भी चित्र में है। हाथ से प्रदर्शनियां बनाई जाती थी और सब सेवा केंद्रों को दी जाती थी, और फिर प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, मेले बने उस चित्रशाला से, खूब सेवा के धूम मची। तो देखो, बाबा ने एक वरदान दिया तो उससे कितनी बाबा ने सेवा हम बच्चों से कराई। तो ये चलता रहा। फिर तो जगदीश भाई जाने लगे फॉरेन में, अब बाबा के अलग होने के बाद। तो 80s में हमको कहा कि ये जो चित्र ये है, लिटरेचर डिपार्टमेंट है, मैगजीन है, इसको भी आप संभालिए, तो वो भी होने लगा। इस प्रकार से हम कहते हैं बाबा ने अपना तो बना लिया, अपना बना करके इस छोटे से बाबा के हम बच्चे हैं उनसे कुछ सेवा भी ले ली, इसलिए बहुत लकी है। इस प्रकार से चलते चलते अब तो देखिए कितनी बड़ी प्रेस बन गई है, कितने मैगजीन पहले जो निकलती थी 35,000 जब हम जहां आए थे शांतिवन में, अब 3,40,000 मैगजीन निकलती है, जो कि सारे भारत में और सारे विश्व में जाती है। इस प्रकार से वृद्धि को पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत टाइम बीत गया, अब तो टाइम एज पास्ट, कितना कहते ना, बहुत टाइम नदी में पानी बह गया, अब तो बिल्कुल कहां पर पहुंचे हैं। बाबा कहता है सडपंद, जानते हो उसका अर्थ क्या है, एक सिंधी में कहता है हम सडपंद है बस, अब सत्य गोल्डन एज, यही आवाज दो तो वहां आवाज पहुंचती है, आवाज की रिस्पॉन्ड आता है। अब सडपंद पर पहुंचे हैं, अब तो एक की तमन्ना है, क्या तमन्ना हम सभी की, क्या बनना है बोलो, क्या बनना है क्या बनना है, बाप समान है, क्या बनना है बोलो भाई, बाप समान। कौन से बाप समान, बाप तुम्हारे तीन है, लौकिक तो लौकिक के समान तो होंगे, बल्कि उससे भी आगे होंगे, दूसरा है ब्रह्मा बाबा, तीसरा है शिव बाबा। शिव बाबा जैसे तो नहीं बन सकते, बन सकते हैं हाँ, और ब्रह्मा बाप जैसे बन सकते हैं, तो कैसे बनेंगे। देखो, एक मुरली में बाबा ने कहा था, अपने आप बाबा ने बात कर रहे थे, मैंने अपना पूरा तन मन धन लौकिक परिवार सब कुछ इसमें समर्पण कर दिया, इस ईश्वरीय यज्ञ में। आप देखो हिस्ट्री पढ़ो, अपने पास कुछ भी रखा नहीं, तन मन धन सब जन सब अपने सबको ज्ञान में लाए, लाए तो भाई चले गए वापस, और बात है सभी को ज्ञान मिला, तन मन धन जन सब कुछ, कितना बड़ा कनेक्शन था, सब राजाओं से कनेक्शन, बहुत बड़ी महिमा थी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी अपने इलाके की, सब कुछ नशावर कर दिया। फिर बाबा पूछता अपने से क्यों किया, ये मुरली में आया था, तो बाबा ने खुद ही जवाब दिया, پتا کیا جواب دیا؟ اس لیے کیا کہ مجھے انت میں کچھ بھی یاد نہ آئے. سن لو. تو ہم نے دیکھا سرکار بابا نے جب وہ کیا شریف اویکت ہوئے, بابا کو سوائے شیخ بابا کے کچھ یاد نہیں تھا, کوئی سامنے نہیں تھا. بابا سے پوچھا گیا, بابا آپ کو سرجن ہاتھ میں تھوڑا تربر ہوئی یعنی درد ہوا, بابا آپ کو سرجن بلایا ڈاکٹر کو؟ تو بابا نے کہا جی میں تو سرجن کے پاس ہوں. یہ بابا کے ماں باپ کے تھے, سوائے شیخ بابا کے ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا. فرق سے اڑ گیا. کیوں کیا؟ کیونکہ سب کچھ تن من دھن سب کچھ سوا کیا ہوا تھا. تو ابھی تو ویسا نہیں ہے, ابھی تو ویسا کوئی سب نہیں کر سکتے. آپ سبھی اگر باپ سمان بننا ہے تو باپ سمان کاریہ بھی تو کرنا پڑے گا. لیکن بابا ایک اور مارجن دیتے ہیں, بچے اپنے پاس رکھو لیکن یہ سمجھو کہ یہ میرا نہیں, کس کا ہے وہ. یہ تو کر سکتے ہیں, اس کو ایسا یوز کرو کہ یہ بابا کا ہے میں یوز کر رہا ہوں. یہ تو سمرتی میں رکھو تب بھی ٹھیک ہے. تو اس پرکار سے ہم نے دیکھا کہ بابا کرماتیت فرشتہ بن گئے. کرماتیت فرشتہ, کوئی کرم نہ اس شریر سے بندھن نہ شریر دیہ داریوں سے بندھن, اس دنیا سے بندھن اڑ کر کے سوکشم بدن پہنچ گئے. تو ہم ویسا بننا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ کرماتیت بننے کے لیے پہلی سٹیج کیا ہے بتاؤ؟ آپ سوچو کہ اب کرماتیت بننا ہے تو پہلی سٹیج کیا ہے؟ ہاں جی سمجھ نہیں آیا. نشٹم ہوا, وہ تو لاسٹ سٹیج ہے. نشٹم ہوا سمرتی لبنا باقی رہا کیا؟ پہلی سٹیج ہے کہ وکرما جیت بنو. ابھی ہم براہمنوں سے کوئی وکرم نہیں ہونا چاہیے. دس از دا فرسٹ سٹیج آف کرماتیت. اور میں سمجھتا ہوں اس بات میں سب براہمن ہم پاس ہیں نا, بولو ہے پاس؟ یس اور نو؟ جو مجھے پاس ہے ہاتھ کھڑا کرے. ویری گڈ. اب ہم وکرم تو نہیں کرتے, کوئی پاپ کرم تو نہیں کرتے نا, تو یہ اس میں تو پاس ہو گئے وکرما جیت. سیکنڈ سٹیج کیا ہے؟ سیکنڈ بولو وکلپا جیت, یعنی وکلپ نہ آئے کبھی. رنچک ماتر بھی وکلپ نہیں آنا چاہیے. یہ دیکھ لو, اگر وکلپ آیا تو جو آپ کی بیٹری چارج ہوئی ہوئی ہے تھوڑی بہت, جو کچھ بھی چارج کی ہے, تو بیٹری ڈسچارج ہو جائے گی. ڈرنا چاہیے. نو وکلپ, من میں کوئی برا سنکلپ یا اشدھ سنکلپ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ ہم نے کرماتیت فرشتہ بننا ہے, کسی کے پرتی بھی وکلپ آنا, بری درشتی جانا اور اپنی اور زیادہ من خراب کرنا, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو سیکنڈ سٹیج از وکلپا جیت. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں سب پاس ہوں گے. بنارس ہے بھائی ہمارے گپتا جی کا, ہمارے متر تھے گپتا جی, بہت ملتے تھے ہم کانپور جاتے تھے کیونکہ کانپور اس وقت نمبر ون تھا جب ہم نکلے تھے. بابا مما کہتے بچے کانپور دیکھ کے آؤ, کانپور جاتے تھے. تو یعنی وکلپ بھی نہیں آتا ہوگا, ٹھیک ہے. یس نو وکلپ, یس اور نو؟ جس کے یس بنے ہاتھ. جب ابھی کچھ کم کر رہے ہیں سبھی کا ہو, اگر ہے تو نہیں آنا چاہیے. تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ یہ سیکنڈ ہے. تھرڈ کیا ہے بولو؟ ویارتھ آتیت. ویارتھ نہ ہو, یہ بھی دیکھ لو. ویارتھ کسے کہتے ہیں؟ کیوں کیا کب کیسے, بابا کہتے ہیں نا یہ چیزیں ویارتھ, بیکار کی چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ویارتھ ہے. جسے کوئی پازیٹو نہیں ہے وہ ویارتھ ہے, نیگیٹو. تو ویارتھ اتیت بننا ہے. میں نے وہ کیا کیوں تو ہے ہی ہے. دادی گلزار جی سے میں نے پوچھا, کہتے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو بنارس کا سنکلپ آ گیا, بیٹھے بیٹھے ابھی گھر جانا ہے, کیا کرنا ہے؟ وہ بھی ویارتھ ہے. जिससे मैं जो संकल्प चाहिए वो आना चाहिए और उसके बगैर व्याप्त। तो ये भी हमें करना कि व्याप्त अतीत बन जाए, नो व्याप्त अटाल। ये भी थर्ड स्टेज है। फोर्थ क्या है फिर? चौथी स्टेज क्या है बोलो? हाँ यस बिल्कुल ठीक। साधारण अतीत होना चाहिए, हमारे में साधारण संकल्प ना हो। ये खाना पीना ये ठीक है, साधारण है ये, यानी साधारण माने न्यूट्रल, जो उससे कोई पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, जैसे आपने टू व्हीलर चला दिया, किक लगा दी और न्यूट्रल पर खड़ी थी वो गियर कर दिया आपने, न आगे जाएगा न पीछे जाएगा, पेट्रोल जाया जा रहा है, तो यह असाधारण। तो साधारण माने जे ये जैसा कोई अर्थ नहीं, मैंने कोई उसका लाभ नहीं है, वो पहले नेगेटिव नहीं है परंतु पॉजिटिव भी नहीं है, बीच में खड़े हैं, तो नथिंग यानी कोई कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ये भी कहते हैं अगत बाप दादा कि मेरे बच्चों में व्यर्थ भी कम है परंतु पॉजिटिव भी कम है, यानी वो जिसे कहना जिसे कुछ जमा हो वो कम है। जैसे आज की मुरली में वरदान था ना वरदान कि आप शुद्ध आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, मैं ये हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली हाँ कोटों में कोई आत्मा हूं। तो ये है शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। तो करना क्या है पुरुषार्थ वास्तव में ये है, अभी हमारे ब्राह्मणों का नथिंग नथिंग माने ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, न्यूट्रल है। हमने हर संकल्प को पॉजिटिव करना, तब्दील करना है, जो और कुछ नहीं। जो बाबा ने संकल्प बताए हैं हम उन संकल्पों को रिवाइज करना है। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। भगवानों वाच यही मैं आत्मा हूं एक दफा कह के बैठ के चुप करके और जुट के आने लगे तो कुछ नहीं। उसमें बार बार उसको रिवाइज करो, मैं उसके आगे लंबे आ रह जाओ, यानी आत्मा के बारे में, बाबा के बारे में, ऊपर परम धाम में हूं मैं, ये जितनी भी है शुद्ध संकल्प उसका खजाना जमा होना चाहिए। देखो ये दादी जानकी जी कहती हैं, अब हम भी सुनते हैं कि प्योर संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से, शुद्ध संकल्पों से, पॉजिटिव संकल्प से क्या होता है, दो चीजें मिलती है, एक है पावर और एक है प्योरिटी। यानी पावर भी मिलती है, प्योरिटी भी मिलती है। अगर आप शुद्ध संकल्प कर रहे हैं मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, ये शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, तो यू आर गेटिंग पावर एज वेल एज प्योरिटी। तो ये मार्ग करना चाहिए ताकि आप हर समय तो बिंदु बन के बिंदु परम धाम में नहीं बैठ सकते, चलते फिरते क्या करेंगे। जब भी समय मिले इन शुद्ध संकल्पों में रमण कीजिए। यानी जो हमारा न्यूट्रल संकल्प है, नथिंग, हम कुछ नहीं सोच रहे। मैं पूछूं आप वहां से यहां तक आ रहे थे तो क्या सोच रहे थे? नथिंग में हमारा बहुत टाइम जाता है। अभी क्या करना है, और नथिंग को समथिंग यानी पॉजिटिव में बदलना है, यह है पुरुषार्थ। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हम शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहे। शुद्ध संकल्प कौन से है? मैं कौन, मैं किसका, मैं कहां का, बार बार रिवाइज करें इसको। देखो एक ला है, एक बाबा ने हमको ला दिया है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप बार बार शुद्ध सोचोगे तो शुद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं, टाइम हमारा ऐसे जाया चला जाएगा। हम जैसे भोजन करते हैं, भैया बोल ले गए उधर जाने के, यही शुद्ध सोचते रहे। हम पैदल चल रहे हैं, हर स्टेप पर बाबा बाबा करें और अपने को आत्मा निश्चय करें। जब भी समय मिले हम इन शुद्ध विचारों में रमण करते चले, चलते चले, और उसके बाद फिर बाबा ने कहा बिंदु बन मेरे पास भी आके बैठो, अपने को बिंदु समझ के परम धाम में जाके शिव बाबा को देखो, बुद्धि रूपी आंख से बाबा को देखते रहो मैं उससे लाइट माइट ले रहा हूं, ये भी है। और देखो बाबा ने एक 500 रूपों को याद करने के लिए एक काम दिया था कि सारे दिन में 8 बार है ना 5 स्वरूप, निराकारी, आकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरंकारी, ये 5 स्वरूप थे, उनको याद करो, बाबा के गुणों को याद करो। दादी गुलदास जी कहती है योग क्या है, बड़ा सिंपल तो है, नाचना गाना खुशी मनाना, बस नाचना माने बुद्धि हमारी जो है परम धाम में जा रही है, कभी सत्युग में जा, गोल्डन एज में जा रही है, चक्कर चला रही है, तो ये तो नाचना हो गया, बुद्धि जा रही कहां का। और गाना माने बाबा की महिमा के गीत गाना, महिमा करो बाबा की, अपनी भी महिमा करो, जैसे बाबा ने आज कहा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, जितनी 4-5 बातें बताई, इस प्रकार से अपनी मन में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करो, ये करना चाहिए जमा का। आप भी करते होंगे, मैं हम भी कोशिश करते हैं, बार बार इन चीजों को लाएंगे तो अशुद्ध खत्म होगा, पॉजिटिव जमा होगा तो प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी। सत्य में दो चीजें चाहिए, क्राउन ऑफ प्योरिटी और क्राउन ऑफ पावर, दो जो क्राउन आएंगे वो इन शुद्ध संकल्पों में भ्रमण करने से, बाबा की याद से, और भी जैसे बाबा ने किया हम भी वैसा करें, अपने तन मन धन को लगाएं जैसे हमारा भाग्य बने। अंत में तो क्या होगा, कुछ भी याद ना आया तो मन पहले उससे नष्ट हुआ बनेगा ना, अंत बाबा का अंत मते सो गते तब होगा जब हम अभी से ही इससे किनारा करेंगे, छोड़ना नहीं है, रहते हुए इससे किनारा करना है। इस प्रकार से हमको चलना है, बाबा की याद में रहना है, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है, और जैसा हम सोचेंगे वैसा बने, यही तो योग है। योग में क्या करते हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं बार बार, और अपने घर को याद करते हैं, परम धाम को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के गुणों को याद करते हैं, साइकिल को याद, चक्कर को याद करते हैं, और फिर हम एकदम उसमें परम धाम में बैठ करके बिंदु बाबा को, बिंदु बन बिंदु को भी कनेक्शन करते हैं, जिसे लाइट माइट मिलती है। इस प्रकार से अगर पुरुषार्थ कर चले, व्यर्थ हमारा समाप्त हो गया, साधारण भी समाप्त हो गया, तो क्या बन जाएंगे, कर्मातीत रिश्ता बन ही जाएंगे, बाप समान बन ही जाएंगे। जैसे बाबा हमारा एकदम अंत में कोई याद नहीं था स्वयं शिव बाबा के, तो हमारी अवस्था भी ऐसी बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय भ्राता जी, 61 वर्ष की सतत अध्ययन और साधना से एकदम हीरे के समान हमारे सन्मुख उपस्थित है, और जैसे हीरे से विभिन्न किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार आपने इतने कठिन विषय को, मम्मा बाबा के अनुभवों को हमें देते हुए, अपने जीवन की अनुभूतियों को उसमें डालते हुए कर्मातीत बनना सहज करा दिया, कि छोटे छोटे 5 कदम हम उठाएं तो हम विकर्मा जीत, विकल्प जीत, व्यर्थ जीत, साधारण जीत से कर्मातीत फरिश्ता बन जाएंगे, और हमारे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की भांति हमारा तन मन धन और जीवन उनके समान, उनके जैसा समर्पित रूप से घर परिवार में रहते हुए भी बन जाएगा। तो हम जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का शुक्रिया करते हैं, और इस पावन भूमि में और ऐसे तपस्वी ऋषि महान आत्मा के सन्मुख ऐसा बनने का संकल्प का हाथ भी हम उठाते हैं कि हम अवश्य भ्राता जी विकर्मा जीत, विकल्प जीत, साधारण जीत बनेंगे।
ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही कहता बाबा। तो बस मेरा है।